बच्चे क्यों इतनी जल्दी जो है ये ठंडा मौसम जो होता है, ये सर्द मौसम जो होता है, बच्चों पे क्यों इतना जो है उसे जकड़ लेता है, पकड़ लेता है बच्चों को?
असल में जो बच्चे होते हैं बड़ों की निस्बत उनमें जो इम्यूनिटी का निज़ाम होता है या मुदाफ़ती जो निज़ाम होता है, मतलब जो कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे माहौल में होते हैं उनसे लड़ने की जो कुव्वत या ताकत है वो बच्चों में कम होती है। उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कम डिवेलप किया होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े लोगों के। इस वजह से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सर्द मौसम में इन्फेक्शन के चांस है या रिस्क है वो ज़्यादा होता है बड़ों की निस्बत।
अच्छा, हम लोग जो है आम जो अलामात देखते हैं वो ये होता है कि जैसे बच्चों की नाक बह रही है, खांसी आ रही है, और भी कोई अलामात इस टाइप की होती है?
सबसे पहले तो जो बच्चों के अंदर सर्द मौसम में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर जो बीमारी हो सकती है वो या तो वायरस की वजह से हो सकती है या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। अगर तो वो वायरस की वजह से है उसको हम कोल्ड कहते हैं या फ्लू कहते हैं। उसकी अलामत जो है अगर बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों में सर्द मौसम में तो उससे मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जो वो बच्चों में जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो वो ज़रा सीवियर होता है, ज़्यादा होता है वायरस की निस्बत। तो जो वायरस की अगर हम बात करें तो उसकी फिर आगे से मुख्तलिफ अलामत हैं। अगर जैसे अगर बच्चों को कोल्ड या फ्लू हुआ है
जी
वायरस की वजह से तो उसमें एक जो सबसे पहले अलामत आती है वो नाक उनकी बहती है, मतलब उसे हम रनी नोज़ कहते हैं।
जी
उसके बाद गले में खराश महसूस करते हैं बच्चे, उसको सोर थ्रॉट कहते हैं हम अपनी टर्मिनोलॉजी में या लैंग्वेज में।
जी
उसके बाद कुछ बच्चों में कफ भी होने लग जाती है इसकी वजह से। तो ये जो है ये आम तौर पे इलामत देखी जाती हैं उन बच्चों में जिनको नॉर्मली जो वायरल फ्लू या कोल्ड हुआ होता है उसके अंदर।
अच्छा, आपने फ्लू की बात की तो फ्लू शॉट्स दिए जाते हैं, उसका वैक्सीनेशन आता है, ये कब लगवाना चाहिए? आमतौर पर ये सवाल हमसे पूछा जाता है।
जी बिल्कुल, जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं उसमें ये आता है जिसको
अच्छा
हम फ्लू शॉट्स कहते हैं या फिर वैक्सीनेशन की जाती है बच्चों की। तो जैसे ही सर्द मौसम, मसलन आप जिस भी इलाके में रहते हैं आपको उसका पता होना चाहिए कि आपका जो सर्दियों का सीज़न है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले 1 माह पहले आप उसको फ्लू शॉट्स या फ्लू वैक्सीनेशन करवा सकते हैं बच्चे की।
अगर बच्चा जैसे नहीं लगवा पाए, और आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर आपको फ्लू हो रहा है तो नहीं लगवाना चाहिए, ये सही है?
बिल्कुल ऐसे ही है, जब फ्लू हो चुका है आपको या कोल्ड हो चुका है उस वक्त वो, क्योंकि वायरस ये डिपेंड करता है कि उसकी टाइप क्या है। सबसे पहले जो बहती हुई नाक है वो बेशक बड़ों में हो या बच्चों में हो वो वायरस की वजह से होता है, वो वायरल अटैक होता है। तो जो वायरस का इन्फेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है विदन मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 3 दिन से लेके 16 दिन के अंदर अंदर वायरस का जो अटैक होता है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। उससे जो बहती हुई नाक है या जो फ्लू होता है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो उसके दौरान आपको कोई वैक्सी जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसके दौरान ही वैक्सीनेशन की जाती, कोई भी बीमारी हो उससे पहले की जाती है। तो इसलिए जब आपको वो फ्लू हो चुका है उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं कर सकते।
अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कुछ महीने के या एक मतलब 1-2 साल के, तो उन्हें बहुत लिपटा के रखा जाता है, जो करना भी चाहिए ठंड मौसम में, ठंडक में। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे आप जो है बाहर हैं, बहुत लिपटे हुए हैं, फिर अंदर आए, फिर वो अंदर घर गर्म होता है, और फिर जैसे बच्चे कभी कभी ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, तो इसका बताइए क्या ये गर्मी सर्दी से भी जो है बच्चा तबीयत ख़राब हो सकती है, चाहे वो चाहे 1 ही मिनट के लिए क्यों ना बाहर निकला हो?
बिल्कुल, ये जो टेम्परेचर का चेंज है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो उससे होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो बैक्टीरिया या वायरस वगैरह है इनको जो मौसम के असरात इसी तरह से आप देखेंगे जैसे गर्मी का मौसम है उसमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, इसी तरह सर्दियों में मुख्तलिफ होते हैं। जो एक दरमियाना मौसम होता है जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उसमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है वो इनकी अफजाइश के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, वायरस हो या बैक्टीरिया हो उसमें। तो इसलिए अगर आप बार बार बच्चा ये करेगा कि एकदम से आप ठंडक से गर्मी में आए, कमरे में आए जो गर्म है, और उसके बाद कमरे से भाग के बाहर चला जाए बच्चा, تو اس سے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے جو اٹیک ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے مائکرو آرگنیزمس کا جب انوائرمنٹ یا ٹمپریچر چینج ہوتا ہے.
اچھا, ہم لوگ کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے بچایا جائے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے کیا کام کیا جائے, سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے بچوں کو ٹھنڈک نہ لگے کیا کرا جائے؟
سب سے پہلے تو بچوں کو آپ نے گرم کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا ہے. گرم کپڑے بہت امپورٹنٹ ہیں, اور کپڑے کیونکہ بچوں کی جو اسکن ہوتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے, اور میں نے آپ کو آلریڈی جیسے بتایا کہ ان کے اندر مدافعتی نظام جو ہے وہ کم ڈیولپ ہوتا ہے, کم بنا ہوا ہوتا ہے بڑوں کی نسبت. تو اس لیے کوئی ایسے کپڑے بچوں کو نہیں گرم کپڑوں میں لپیٹنا جو کہ سنتھیٹک مٹیریل کے ہوں, یا پھر کہنا چاہیے کہ مصنوعی ہوں. آپ کوشش کریں کہ جو وول کے پیور وول کا مٹیریل یا کپڑا ہے اس کا بنا ہوا ہے, ان کو سویٹر اور کمبل وغیرہ جو ہیں ان میں لپیٹا جائے. اس کی وجہ سے کچھ بچوں کو اسکن کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے جو کھردرے کپڑے ہوتے ہیں, یا پھر پولیسٹر وغیرہ کچھ اس طرح کا مٹیریل ہوتا ہے. تو گرم کپڑے جو ہیں وول کے سٹف کے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اس کو آپ لپیٹ کے رکھیں. اس کے بعد اس کی جو پریونشنز ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹھنڈ سے کیسے بچانا, اس میں مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر آتی ہیں. مثلاً آپ نے بچوں کو وہ ایسے لوگ جو کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان سے دور رکھنا ہے, کیونکہ جو بچوں کا لنگز ہیں یا پھیپھڑے ہیں جس کو ہم اوپر جیسے اپر ریسپریٹری ٹریک ہوتا ہے اور ایک لوئر ریسپریٹری ٹریک ہوتا ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی سب میں تمام انسانوں اور جانوروں میں, تو جو اپر ریسپریٹری ٹریک ہے وہاں پہ انفیکشن کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی ایسا انسان بچوں کے قریب بیٹھے جو کہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے, کیونکہ جو سگریٹ نوشی کا دھواں ہوتا ہے جب کوئی سگریٹ پیتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اور بچے اسی اگر ماحول میں سانس لیں گے تو وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحبہ اعجاز تنویر صاحب پاکستان سے ہمیں لکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں بچوں کو خشک کھانسی زیادہ ہوتی ہے اور عموماً رات کو کھانسی کے دورے پڑتے ہیں, کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اور دوا کس درجے میں دینا ضروری ہو جاتی ہے؟
عموماً سردیوں کا موسم جب آتا ہے اس میں خشک کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ جو یہ آپ کا ماحول ہوتا ہے, جو ارد گرد انوائرمنٹ ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر کولڈ جب ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں جو بیکٹیریاز ہیں یا جو مائکرو آرگنیزمز ہیں ان کی افزائش ایک تو زیادہ ہو جاتی ہے, اور ایک یہ کہ جو خشک کھانسی ہے اس کا تعلق خیر انفیکشن سے تو نہیں ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے آپ کی جو لنگز بھی ہیں ان کی بھی جو اندر کی لیئرز ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہیں, مطلب ان کے اندر تھوڑا پانی کی کمی ہو جاتی ہے, آپ یہ سمجھ لیں آسان. اس میں تو خشک کھانسی جو ہوتی ہے اس کے جو چانس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں کہ اگر تو خشک کھانسی جو ہے کچھ دن کے لیے ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے, تب تو جو عام طور پہ ایکسپیکٹورنٹ یا کوئی سیرپس وغیرہ ملتے ہیں خشک کھانسی کے, آپ جو آپ اپنے مالج سے رجوع کر کے لیں گے وہ ٹھیک ہے, وہ جو بھی وہ آپ کو دیں گے وہ آپ یوز کریں, بچوں کو کروائیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ خشک کھانسی کے ساتھ ساتھ آپ جو آواز آتی ہے کھانسی لیتے ہوئے جس کو ہم ویزنگ یا پھر کچھ ٹائپ کی آواز آتی ہے جو
کھرکھراہٹ
ٹائپ کی, تو والدین کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ اس قسم کا تو خشک کھانسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے تعلق اس ویزنگ ساؤنڈ کا, یا پھر ساتھ میں یہ کہ کوئی بچے کو شارٹنیس آف بریتھ تو نہیں ہو رہی خشک کھانسی کے ساتھ. اگر مثلاً خشک کھانسی بہت دیر دن تک ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی وہ اس شربت سے جو آپ استعمال کریں, اور رات کو بھی بار بار کھانسی کا دورہ بچے کو پڑتا ہے, مطلب تھوڑی 5-10 منٹ کے لیے وہ مسلسل کھانسی کرتا رہتا ہے اور پھر اسی طرح ہی 2-3 دفعہ رات میں بچہ یوں ہی کھانسی کرتا ہے, تو اس لیے یہ ضروری ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر ساتھ میں شارٹنیس آف بریتھ بھی مطلب سانس بھی تیز تیز آ رہا ہے اور ویزنگ ساؤنڈ یا خرخراہٹ کی بھی آواز ساتھ ہو رہی ہے اس کو خشک کھانسی کے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت چانسز ہے کہ اس کو دمے کی ابتدائی علامات آ رہی ہیں, مطلب پری سمٹمز آ رہی ہیں اس کو استھما کی. تو اس کیس میں آپ کو جو اپنا چیسٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ رجوع کرنا بہت ضروری ہے, ताकि पता चल सके कि ये अस्थमा तो नहीं हो गया बच्चे को, क्योंकि खुश खांसी अगर बहुत देर तक रहे तो वो दमे के भी वजह बन सकती है।
अच्छा, डॉक्टर की बात हुई तो किस वक्त जो है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चों को खांसी आती है घर पे, कुछ ना कुछ जैसे कि आपने कहा सिरप होते हैं पिला दिए जाते हैं, कब डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाए बच्चों को?
देखें, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो सर्दियों में जो कोल्ड या फ्लू होता है उसमें नाक बहरी होती है बच्चों की, माओ को बार बार साफ़ करना पड़ता है उसको, वो पानी जैसा फ्लूड नाक से निकल रहा होता है। तो इस ये जब ये वाली कंडीशन हो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ ये खुद ही ठीक हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन से लेके 16 दिन के अंदर अंदर ये खुद ही ठीक हो जाती है बच्चे के मुदाफती निज़ाम को के मुताबिक। लेकिन अगर ये हो कि जो बहती हुई नाक है, जो पानी जैसे फ्लूइड नाक से आ रही है बच्चे के, अगर वो थोड़ी गहरी होनी, थीक होनी स्टार्ट हो जाए और वो थोड़ी येलो पीले कलर की या फिर हरे कलर में कन्वर्ट होना या तब्दील होना शुरू हो जाए, तो आप ये समझें कि बच्चे को जो है सोर थ्रॉट और बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है वायरस के साथ साथ।
डॉक्टर
आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और इसके लिए एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी होगी अब।
अच्छा, एंटीबायोटिक्स का क्या होता है कि हमारे जैसे बच्चे को तबीयत ख़राब हुई, खांसी आना शुरू की, खुद वालदैन जो है घर में एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं, कर सकते हैं या सही नहीं होता?
नहीं, एंटीबायोटिक देना खुद नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। बदकिस्मती से जो हमारा रीजन है इसमें हम एक तो डॉक्टर बहुत तेज़ी के साथ एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं और हम खुद से ही बच्चों को एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप छोटे बच्चों को ही खुद से देने लग जाएंगे तो उनके अंदर एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, वो उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। फिर उनको मतलब छोटी कम पोटेंसी की जो एंटीबायोटिक है, जो कम असर वाली एंटीबायोटिक है, उससे आराम नहीं आता बच्चों को, आपने देखा होगा। फिर उनको बहुत हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, जिसके फिर बच्चों के लिए अच्छे असरात, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि बच्चे का जो अंदरूनी निज़ाम है वो उस तरह से नहीं बना होता जैसे कि बड़ों का बना होता है
जी।
तो ये बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है कि आप खुद से एंटीबायोटिक कोई भी किस्म की बच्चे को दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब तक बच्चे को थूक जो है वो पीले रंग का स्पूटम नहीं आता खांसी के साथ, मतलब एक खुश खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है, तो जब तक बलगम नहीं आता बच्चे को अच्छी तरह से, तब तक आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी। हाँ, जब अगर उसको बलगम वाली खांसी आ रही है या जो उसको ज़ुकाम है वो नज़ले में कन्वर्ट हो गया है, उसको थीक ज़ुकाम है हो गया है जो पीले रंग का होता है, ज़रा आप उससे पता चल जाता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से रजू करना है, ख़ुद से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी।
अच्छा, इसमें घरेलू टोटके हम किस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखें, घरेलू अगर हम टोटकों की बात करें तो कोई भी किस्म का सूप, जैसे चिकन या मटन जो है, इसका सूप बच्चे के लिए बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि इससे जो मुदाफ़ती निज़ाम है रिसर्च के मुताबिक वो अच्छा होता है बच्चे में, इससे उसकी जो कुव्वत मुदाफ़त है उसमें इजाफ़ा होता है। तो आप बच्चे को जो है सूप दें, यखनी दें, जैसे कि हमारी एक ट्रेडिशन है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मतलब मसाला जाते ऐड करके हम यखनी बनाते हैं, उसकी सूप बन जाता है, वो मटन का हो या फिर चिकन का हो, तो वो बहुत हेल्पफुल है इस केस में ठंड से बचाव के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म का जो नज़ला ज़ुकाम और खांसी है उस केस में बच्चे के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं शहद की, तो वो बहुत ही एक अहम चीज़ है जो हम दे सकते हैं खांसी और ज़ुकाम में भी, और ये तो आपको पता है हदीस है, इसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। तो बच्चे को अगर आप नीम गर्म दूध में शहद डाल के दें, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिकदार में शहद नहीं देना, थोड़ा देना बच्चे को, पता है
ज़्यादती बुरी,
हाँ जी ज़्यादती बुरी होती है। इवन बच्चे को आप एक जो टीस्पून होता है उसका भी हाफ देना होता है, बच्चे को बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि शहद की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ठीक नहीं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा शहद जो है नीम गर्म दूध में मिला के बच्चे को दें, वो भी उसके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के विटामिन्स और मिनरल्स और इसके जो कंपोजिशंस हैं वो बनी बनाई फार्मेसी से ये मार्केट में अवेलेबल
जी
हैं, वो बहुत मुफीद साबित होती हैं ठंड के मौसम में मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करने के लिए, और बच्चे की जो जनरल सलाहियत है
जी
किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो इससे इम्प्रूव होगी।
अच्छा, आपने विटामिन मिनरल्स की बात की। हमने देखा है कि जब तबीयत ख़राब होती है, नज़ला खांसी होता है, तो विटामिन सी आमतौर पे दी जाती है, तो विटामिन सी का क्या किरदार है?
विटामिन सी जो है ये आपका जो एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, वो उसके फिर डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म है, लेकिन बहरहाल जब भी आपको जुकाम होता है तो और खुश्क खांसी, इसमें जो है विटामिन सी एक अहम किरदार अदा करता है इसको ठीक करने के लिए। तो जैसे हम कहते हैं अगर आपको विटामिन सी की टेबलेट्स गोलियां अवेलेबल नहीं है या आप वो नहीं ली घर में, क्योंकि कीनू का सीज़न होता है,
हाँ, फल
मौसमी
खा सकते
कीनू,
हैं।
आप वो खाएं, वो वाले फ्रूट्स खाएं जो विटामिन सी की मिकदार जिनमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कीनू है, मौसमी है, चकोतरा है, और हमारे तो इलाकों में ये बहुत कसीर मिकदार में अवेलेबल भी
जी,
हैं।
मिलते हैं।
तो जो आपको फ्लू हो जाता है, जैसे असल में जो विटामिन सी है इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एक्टिविटी भी है, तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ये अपनी उस एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए भी आपका जो जुकाम और खांसी और नज़ला जो ठंडे मौसम में हो जाता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो जो कीनू या विटामिन सी का कोई भी सोर्स है वो अहम रोल अदा करता है उसको ठीक करने के लिए।
अगर ठंडे मौसम में जैसे हम यही फल खाना शुरू कर दें, तो ऐसा हो सकता है कि जो उसका अटैक अंबर हो, सर्दी का जो अटैक है, वो कम हो बच्चों पे।
सर्दी तो उतनी ही रहेगी, मतलब जितना जो इन्वायरमेंट में है, लेकिन ये कि जो एक
इन्हें एक
आपको
बीमारी जो हम पे
जुकाम
होता
है
है।
या
हाँ
नज़ला है वो कम होगा, क्योंकि आपका आपके अंदर एक समझें जैसे हमने एक सिंथेटिक वैक्सीन करवा ली बच्चे की या बड़े की किसी की भी, तो जो कीनू है या संतरा है या विटामिन सी है वो एक अहम किरदार अदा करता है आपके मुदाफ़ती निज़ाम को
जी
बेहतर करने के लिए, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस है उससे लड़ने की सलाहियत मौजूद है, तो वो एज अ शील्ड आपकी बॉडी में काम
मुदाफ़ा
करेगा।
ज़्यादा हो जाती।
बिल्कुल
जैसा कि आपने बताया कि ठंडे मौसम में जो खुश्क हो जाती है सब कुछ, तो जिल्द भी खुश्क हो जाती है, और ऐसे देखा गया है कि कभी बच्चों के नाक से भी जो है खून आने लगता है, तो इसके लिए क्या करें वालदे?
जो नाक के अंदर की स्किन होती है, एपिथीलियम जो होती है, वो ठंडे मौसम में या ठंडी हवा की वजह से फट जाती है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग की और बहुत सी वजूहात हैं नाक से जो खून आता है, लेकिन जो अगर आप ये महसूस करें कि वो पीछे से नहीं आ रहा है खून, लेकिन सिर्फ नाक के अंदर जो स्किन है वो एपिथीलियम जो है उसके फटने की वजह से या कटने की वजह से जो ठंडी हवा है उसमें जब बच्चा जाएगा खेलेगा या स्कूल जाएगा, या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं जो जिनमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है तो उसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो रही है नाक में, तो उसमें आप वैसलीन है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अंदर स्किन को जो है वो डिहाइड्रेट नहीं
चिकना
होने दे,
रखे।
हाइड्रेट रखे उसको, मॉइस्ट रखे, वो यूज़ कर सकते हैं अनटिल और अनलेस के वो उसका सोर्स कोई और है, उसकी वजह कोई और है। तो आप जितना ज़्यादा उसको हाइड्रेशन उसकी में रखेंगे, मसलन वैसलीन है या किसी भी किस्म का ऑलिव ऑयल है आप वो भी लगा सकते हैं, अगर मतलब मैं यह घरेलू उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि फ़ौरन से आप क्या कर सकते हैं। फिर अगर मतलब नेज़ल कंजेशन या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, अगर कोई मेडिकल इसकी रीज़न है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली बहुत सी अद्वियात हैं जो हम दे सकते हैं और वो उससे फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए
इन्हें
यूज़
अगर
की
एक
जा
चीज़ आपने
सकती है।
देखा कि वो मुसलसल हो रही है, तो आप सीधा डॉक्टर से रुजू
बिल्कुल
करें।
ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अगर आप कोई भी चीज़ है जो बच्चे में हो रही है जो 3 दिन से ज़्यादा है, मतलब 3 दिन तक आप मैक्सिमम वेट कर सकते हैं, आप घरेलू कोई टोटका है मसलन, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर नाक के अंदर की जिल्द जो है वो जैसे आपकी हाथ की स्किन या मुंह की स्किन आपने देखा होगा बच्चों की
फट
ज़्यादा
जाती है,
रप्चर
खून
हो
निकलने
जाती है,
लगता
फट
है।
जाती है एज़ कम्पेयर टू के बड़े बड़े लोगों के, इसी तरह ही नाक के अंदर की भी उनकी जिल्द फट जाती है, तो ये तो एक बहुत आम सी बात है। تو اس کی وجہ سے اگر خون آ رہا ہے تو اس کو تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی اولیو آئل ہے یا کوکونٹ آئل ہے یا بادام کا تیل ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ اسکن سافٹ رہے گی اور وہ پھٹنے کا چانس زیادہ نہیں ہے, جیسے کہ منہ کی جلد ہے یا پھر آپ کے ہاتھوں کی جلد ہے اسی طرح سے. لیکن اگر اس کی ریزن کچھ اور ہے, مطلب آپ کو کوئی انفیکشن ہوا ہوا ہے اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو آپ کے بیکٹیریاز ہیں انہوں نے انویڈ کر لیا, وہاں بیٹھ گئے وہ اور اس کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو اوبویسلی پھر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس ہیں, جو بھی آپ کا مالج سجیسٹ کرے گا وہی ہوگی.
میں فوراً ڈاکٹر رجوع کری. اچھا یہاں پر ایک اور کام کیا جاتا ہے, خصوصاً ایران میں تو خشکی ہو جاتی ہے, ویسے ٹھنڈے موسم میں سبھی جگہ جو ہے خشک ہو جاتی ہے ہوا, تو گھروں میں جو ہے آپ پانی ابلنے کے لیے رکھ دیں یا اس میں اس کی بھاپ سے جو ہے گھروں کو وہ کیا جائے, یعنی وہاں کا جو آپ کا موائسچر ہے اس کو بڑھاتے ہیں, تو یہ کس حد تک مفید ہوتا ہے؟
یہ بہت مفید ہوتا ہے سردیوں میں کہ آپ سٹیم دیں, جس کو ہم سٹیم
کہتے ہیں.
آپ دیکھیں بچوں کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک بند ہو جاتا ہے, بچے بار بار آپ کو شکایت کریں گے کہ ان کو ایک ناک کھلی ہے ایک بند ہو گئی ہے, ایک ادھر کی کھلی ہے ادھر کی بند ہو گئی, ادھر کی بند ہے ادھر کی, مطلب بچوں کو بہت پرابلم ہوتا ہے, یہ
بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے
اور ایون بڑوں کو بھی, لیکن خاص کر کیونکہ ہم موضوع کی مناسبت سے بچوں کی بات کر رہے ہیں,
ہمارے پاس 1.5 منٹ.
اچھا, یہ بھی تو اس کو اس کے لیے سٹیم یا بھاپ جو ہے وہ بہت مفید ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ ایک نارمل سیلائن یا پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کے اس کا ایک قطرہ ناک کے اندر بچوں کے ڈال دیں سونے سے پہلے, تو اس کی وجہ سے جو نیزل کنجیشن یا ناک بند ہوا ہوتا ہے وہ بند ناک کھل جائے گا اس کا.
اچھا, میرے خیال سے 30 سیکنڈ ہے, اگر آپ اور کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہ رہی ہوں, کوئی بات رہ گئی ہو؟
بس اس کا یہ کہ اگر آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ بیکٹیریل کوئی بھی انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع جلدی کریں, لیکن وائرس کے کیس میں جو ہے اتنی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ خود بخود باڈی سے 1-1.5 ہفتے میں یا 3-4 دن میں ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ باڈی سے آپ کی خارج ہو جائے گا.